से ये कोटि कोटि गुण श्रेष्ठ है। चल रही है, मान ले कहीं जा रही साज समाधि, मन में बस उन्हीं की कृष्ण की भी चिंता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि जो नाम रूप जाने ना, ये कौन मुनि लोग। यम नियम मैंने क्या, यम इंद्रियों को
सम दो।
यम नियम में भी वही यम सम और दम का ही यहाँ पर यम और नियम। आसन प्राणायाम आसन माने एक आसन पर बैठ कर चिंतन करना। प्राणायाम गोपियां चाहे तो लाखों कोटि वर्ष एक आसन पर ही बैठी रह जाएगी। प्राणायाम प्रत्याहार विषयों का प्रत्याहार, प्रति आहार प्रत्याहार, मैंने मन उधर जाता है फिर ले आना। गोपियां क्या करती हैं, मन जा रहा है कृष्ण के तरफ में, उनको बटोर करके इधर ला रही है विषयों की तरफ में, और विषयों की तरफ उनका मन नहीं, स्वाभाविक गति से कृष्ण की तरफ में जा रहा है। धारणा कृष्ण को मन से हटाना चाहती है और वही आ रहा है। यम नियम वही चाहती है कि इस घाट पर न जाए, तैर घड़ी चल रहा है। तो ये लोग इन सब के द्वारा नाम रूप, ये हमारा नाम रूप और शरीर नहीं है, यही है पर हम लोगों का बद्धमूल धारणा है कि मैं पंडित हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनी हूं, ये सब अपना है। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ये सब कुछ अभिमान है, यह भूल जाना पड़ेगा। और हमारा स्वरूप कृष्णदास है यह समझना पड़ेगा। गोपियां इसी प्रकार हमारे प्रति नित्य बुद्ध बुद्धि बुद्धि गोपियां निज देह भेद जानते पाए, और वो हमारी लीला स्मरण करके हमारा चिंतन करके सब कुछ भूल जाती है, सब कुछ भूल जाती है। मुनि लोग से समाधि दशा है, नाम रूपात्मक जगत, ये नाम और रूप का ये जगत है फूल, और अपनी आत्मा को भी नहीं जानते हैं, परमात्मा में मिला देते हैं। गोपियां क्या करती हैं, नित्य वर्तमान मेरे इस रूप को चिंतन करके अपने अंतःकरण की और बाहरी समस्त वृत्तियों के द्वारा केवल मेरा स्मरण करती हैं और सब कुछ भूल जाती है। और हम लोग चेष्टा करने पर भी कुछ नहीं होता, एक मिनट होगा नहीं तो फिर होगा, एक तो कृष्ण की लीला ही नहीं याद आएगी, कब आप याद आएगी, कब जब भावावस्था हो अनर्थ दूर हो जाएगा और किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। उस समय ऊपर का शुद्ध सत्व जब हमारे हृदय में अपने आप कृपा करके यहाँ पर अवतरित होगा, उस समय सब चीजें अपने आप याद आ जाएगी। अभी कितना हम चेष्टा करते हैं कुछ भी कृष्ण की न हो, माँ प्रभु की लीलाएं हैं जो चैतन्य भागवत इत्यादि में चैतन्य चैतामृत में गढ़ रही, वही याद नहीं रहती स्मरण। यदि कोई एक याद करे स्मरण करे, मैं गोदावरी के तट पर हूं, देखा एक बाल सन्यासी वहां पर बहुत सुंदर सूर्य के समान उसकी दिव्य ज्योति है देख रहे हैं, और एक महाराजा वेद की बाणियों से बंधित होकर के अपने बंदियों के द्वारा और आप ढोलक इत्यादि बज रहे हैं, बाजा बज रहे हैं, और उनके अंग रक्षक और सब लोग आए, और वहां पर उन्होंने कपड़े अपने रखे, वहां पर बजने लगा, वेद की ध्वनि हो गई, लाखों हजारों ब्राह्मण लोग वेद की स्तुति कर रहे हैं, और वो गोदावरी में स्नान करके और उसके बाल सन्यासी की तरफ में देख करके आकर्षित हो जाते हैं। बस केवल एक धोती पहना और उस बाल सन्यासी के पास में हाथ जोड़ करके उनको घुटने टेक करके लोग तो बैठे थे ना ऐसे, हाथ जोड़ करके टेक करके बैठ गए। तो बाल सन्यासी ध्यानस्थ था, इनको देख करके आँख खोल दिया, खोल करके फिर आप मन आयरामंद है, मैं वही आपका दास। कैसे आपने जान लिया कि मैं आयरामंद? कैसे जान लिया? जान कैसे लिया? अंतर जानी तो बुद्धि के साथ मान लिया
था
कुछ और नहीं। अरे गाने बाजने के साथ में इतने लोगों को आ रहे हैं उस समय के, वो गवर्नर जनरल ऑफ द कौन थे वो? और इतना बड़ा राज, इतना बड़ा भारी पदाधिकारी आकर के हाथ जोड़ करके एक बाल सन्यासी के सामने आकर के बैठ करके प्रस्तुति करेगा, ये उन्हीं के लिए संभव सकता है, दूसरे के लिए नहीं। कितनी दीनता, मां प्रभु जी ने उनको अंत में था। इसके बाद मैं इसीलिए आया, हमको आपसे मिलने के लिए साहब, मैं आपके लिए प्रतीक्षा करूंगा, मैं वहीं पर रहूंगा, एक ब्राह्मण के घर वहीं पर रहूंगा, आप वहीं पर मुझसे मिलेंगे। किसान क्यों मिलेंगे? किसी को साथ मत लाएंगे, दूसरा व्यक्ति में हमारी बात बात को सुनने वाला हो। माँ प्रभु जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये कब आएगा कब आएगा कब आएगा। माँ प्रभु जी उत्कंठित हैं, भगवान जिनके लिए उत्कंठित हैं, और वो कितने उत्कंठित हैं, कब समय हो कब समय हो, शाम नहीं हो गई, शाम हो गई बस, अकेले वहां से पहले दूर तक तो आए, कुछ लोगों के साथ में उनको खड़ा कर दिया और उनको वहीं से लौटा दिया। थोड़ी देर के बाद में रथ लेकर के आए, बस अकेले वही धोती पहन करके उनके चलने जाए। माँ प्रभु जी उत्कंठा से एकदम अब कथा एकदम साधकोचित प्रथम स्थिति से लेकर और महाभाव की अंतिम स्थिति तक, प्रेम तत्व, कृष्ण तत्व, राधा तत्व,
रस तत्व,
रस तत्व, विशद वर्णन स्थापित है। महारस राज भाव इन्हीं लीलाओं को भी स्मरण करें और क्या क्या वार्तालाप हुआ, कितना बड़ा भाग्य साधन होगा। कहते हैं कुछ भी सनातन गोस्वामी मिले प्रयाग, उन्हीं का ही स्मरण करें, देखो कितना समय हमारा कट जाएगा, और उसमें जीव स्वरूप से लेकर के राधा स्वरूप से लेकर के सब कुछ प्रेम साधन
संबंध
सब काम खत्म। कोई चिंतन करे ना, कोई साधक को तत्व करेगा, इसलिए साधकों के लिए ये सब चीजें चिंतन करने की चीज है। तब धीरे 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 मन कृष्ण में निविष्ट होगा और तब उसमें कृष्ण की कृपा ऊपर से बरस करके हमारे हृदय में आती, इसी तरह से भाव आता है शुभ सब का हमारे हृदय में, ये सब उसके उपाय, अन्यथा नहीं हो सकता है। ऐसे ही खाती करके और समय नष्ट करने में अभिमान इत्यादि में सब उससे नहीं, तो साधन भजन होना चाहिए, इसका नाम है साधन भजन। इसलिए पति पुत्र इत्यादि संसार का कोई चीज भी बाधक नहीं है, बाधक कौन है, हमारी चित्त वृत्ति, हमारे दूसरा लोग आकर के हमारा समय नष्ट करते हैं और दूसरा लोग हमारे भजन में विघ्न देते हैं, हम एकांत में रहेंगे वन में तो वहां पर भी पशु पक्षी कीट पतंग ये सब नहीं है, जो मनुष्य के पुरुषों में ये सब भाव है उन जंगली पशु पक्षियों में वो सब भाव नहीं है, सब तो है, विघ्न बाधा यहाँ है तो वहां पर भी यदि डाल कर गिर जाएगी तो भी उसमें भी आप, एक आदमी हमारे बोले गुरु जी से हम जाएंगे वन में रहेंगे पेड़ों के नीचे रहे, तो गुरु जी ने कहा जैसे यदि डाल टूट जाएगी तो क्या करेगा, डाल दे तो टूट जाएगी, तो फिर कोई उत्तर ही नहीं आया। साधु संघ से बढ़ करके और कोई हमारे लिए सुरक्षा की चीज नहीं है, इसलिए साधु संघ में रह करके इन सब साधन, ये कौन बतलाएगा, वृक्ष बतलाएगा एकांत वन में, ना राधा कुंड में जाकर के राधा कुंड जी का पानी बतला देगा तुमको, राधा कुंड के पानी चिन्मय है, सच्चिदानंदमय है, वो अभी तुमसे बातचीत नहीं कर, जब तक इतना स्थूल है। उसको ग्रहण करने के लिए वैसी हमारी योग्यता होनी चाहिए। तब इसलिए साधारण मुनियों की तो बात क्या, ऐसे ऐसे सनक सनंदन इत्यादि से गोपियों की जो सहज समाधि है, जिसमें अपने नाम इत्यादि सब गोपियां, किंतु नाम भूलने की जरूरत नहीं है, गोपियां अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। हम लोगों को अपना नाम, अभी का नाम हमारा नाम नहीं, अभी का शरीर हमारा नहीं है, अभी की जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो अपनी इच्छाएं हैं। इसलिए इसको इस सबको भूलने की जरूरत है। इसलिए त्रिजगत मोहन विचित्र लीला स्तंभ स्वरूप अनुसंग बल धाम धी बुद्धि, गोपियों का कोई भी नाम रूप गुण यह सब जड़िया नहीं है, उनको भूलने की आवश्यकता है, उनकी स्मरण की आवश्यकता है, किंतु मुनियों को अपना यह शरीर है उसको भूलने की जरूरत है। इसलिए गोपियां कभी नहीं भूल सकती। अतएव अपने पति पुत्र इत्यादि, अपने देह व आत्मा तक को भी अपने पति इत्यादि को नहीं जानते, पुत्रों से कोई संबंध नहीं, पुत्र है ही नहीं है, और जिनको है उनको पूर्व राग तक है कि वो गोपियों के संग में वो भी नित्य सिद्धा हो जाए। इसलिए गोपियां इस लोक की परलोक की कोई चीज की चिंता नहीं करती, किसी चीज की चिंता नहीं करती, चिंता करती हैं किसकी, बस कृष्ण सुख की चिंता, कैसे कृष्ण सुखी हूं, और कोई चीज की चिंता नहीं करती। जैसे नदियां समुद्र में प्रविष्ट हो जाती हैं और सब कुछ छोड़ देती हैं, ऐसे ये गोपियां हमारे अंदर में प्रविष्ट हो जाती हैं, प्रविष्ट माने हमारे चिंतन में तदात्मिका हो जाती है। इसलिए ऐसे मुनियों से भी ये लोग बहुत सिद्ध हैं। कृष्ण ने कहा तुम लोग हमारा ध्यान करो, मैं सर्वत्र ही उपलब्ध हूँ, मैं दूर थोड़े ही हूँ। तो गोपियां हंसने लगी, कैसे अवज्ञा से हंसने लगी, क्यों हंसने लगी, अरे हम लोगों को ये कहते हैं जी हमारा स्मरण करो, हम तो तुम्हें भूल जाना चाहती हैं और नहीं भूलती, अब तुम हमें शिक्षा दे रहे हो कि तुम हमारा स्मरण करो, हमारा ध्यान करो, हमारा अंधकूप कहीं है, हमारा तो अंधकूप है ही नहीं है, वो संसारी लोग हैं जो आपको भूले हुए हैं, वो संसारी हैं, और हम लोगों को संसार को बचपन से ही हम ध्यान नहीं, आपके हाथों के साथ में हाथ मिला करके खेली है, नित्य की है, बचपन से ही एक साथ में सब था, और वार्तालाप साक्षात रूप में हरास की स्थिति में हम आपके कंधा पर चढ़ी हैं, और आप कहते हैं कि हमारा स्मरण करो, हमें स्मरण नहीं करना चाहिए, बल्कि आप हमारे मन पर, हमारा मन ही बंदा बनाए, वहीं पर आप प्रकट हो।
तो जन जो गांधी जी बोले मुरे को ध्यान शिक्षा करो लोक हंसाई मानो,
कहते हैं मुनियों के लिए मुनि लोग कोई कोई मुनि चारों तरफ में आग लगा देते, बता दू
ना
मुनि लोग आग लगा देते हैं चारों तरफ में और बीच में बैठ जाते हैं, आग उनको जलाती नहीं है, बल्कि उसी में उनका साधन, ये आग जलने पर भी मालूम न हो कि किस लिए करते हैं प्रैक्टिस, आग जलने पर भी हमको मालूम न हो, अर्थात संसारिक ताप हमको स्पर्श न करें, इसलिए इनको आग में बैठने की जरूरत है। आग तो जल रही ऐसी जैसे समस्त विश्व तीनों लोग जल जाए और उस आग के अंदर में विरह आग के अंदर में बैठी हुई ये रूप है। और टीका है परम दूसरा अष्टांग जो संपत्ति महादुर्निग्रह अष्टांग जो के द्वारा दूसरा क्रोध को दूर कर देते हैं कैसे साधारण एक मिले ये बात ये विश्वामित्र जी सिद्धाश्रम में वो तपस्या कर रहे हैं सुबाहु मारी तारुका जगह में बोलो पेशाब मल मूत्र इत्यादि हार टट्टी फट्टी फेंक करके और तरह तरह से उनको जब भेद बन सका बेचारे कुछ नहीं बोले क्यों उनकी तपस्या भंग हो जाएगी इसीलिए राम के पास में गए सचमुच में कहो तो वो भक्त थे इसलिए नहीं गए राम की कुछ सेवा प्राप्त करने के लिए राम को ले आए लक्ष्मण जी को ले आए वहां पर तारुका और ये सब का विनाश कराया और इसके बाद में सेवा कराने के लिए करने के लिए उनको लेकर के जनकपुरी इत्यादि गए और ये सब लीलाओं के संपादक बने ये उनकी सेवा क्रोध इत्यादि को दूर कर दिया वो चाहते ना एक बार में ही जीव रामचंद्र जी को सिखलाया था वो चाहते तो उसमें अगस्त जी राम को मार सकते थे समुद्र को पान कर लिया एकदम पूरा एक चुनू उठाया ऐसा किया समुद्र को सूख गया और उनके पास वही बाण थे जिसने मारा उसको
आदित्य कवच
उसके पास में थे किंतु अगस्त जी ने स्वयं उन पर नहीं छोड़ा न मारा क्यों रामचंद्र जी की लीला संपन्न होगी सब समय इनके ये लोगों के ऐसे जोगी लोगों से भी गोपियां कितनी बड़ी ऊंची है बहुत बड़ी ऊंची ये लोग अपने समाधि में नाम रूप इत्यादि को छोड़कर के ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं और गोपियां साक्षात रूप में करती हैं कि हमारे पैर में अलता लगा दो ऐसे परम ब्रह्म को जिनको वो ध्यान करें और उस ब्रह्म को बुला करके कहती इधर आ जाए कोई सेवा काम नहीं है ठीक पैर में अलता लगा ऐसे परम ब्रह्म के लिए इन गोपियों को बिना ही प्रयास के उनको कितना प्रयास करना पड़ता है कितने जन्म लग जाते हैं और गोपियां चुटकी बजाते हैं बिना प्रयास के ही ऐसे परब्रह्म को कहती हैं हमारे पैर में अलता लगाओ ये हमारा श्रृंगार कर दो बेनी जैसे सेवाओं में उनको साक्षात रूप में और वो बड़े प्रसन्न होकर के परब्रह्म जो निराकार रहते हैं आकार धारण करके इनकी सेवा के लिए आ जाते हैं बतलाओ कहाँ वो ब्रह्म और कहाँ ये और कहाँ गोपियां कहाँ वो सब मुनि ऋषि इसलिए मुनियों से गोपियां का महत्व बहुत ऊंचा है बहुत ऊंचा इसलिए इन सब मुनियों में सबसे श्रेष्ठ कौन मुनि है नारद समस्त मुनियों के गुरु हैं और ये नारद जी भी जिनकी जिनको कितना महत्व देते हैं उद्धव को
नारद जी ने तो नव वृंदावन लीला प्रकाश करवाया ललिता कुंड
सब कुछ किया किंतु गोपियों की कोई सेवा की कभी कहाँ किया
वो जब ललिता कुंड में जब
सेवा क्या किया
अरे
उनके आराध्य के परमा आराध्य उनके ही सेवा सब कर रहे हैं गोपियों की सेवा इसलिए गोपियां साधुओं के भी साधु हैं यदि कहो परम साधुत्व के लिए प्रसिद्ध सनक आदि आत्माराम मुनिगण जिस प्रकार से समुद्र प्रविष्ट नदियों की तरह है ब्रह्म में प्रविष्ट होकर के नाम रूप अपना जानते जैसे कि ये लोग प्रवेश कर जाते हैं जिसको मुक्ति कहते हैं साई जी उससे भी ऊपर वो क्या कभी ऐसा कर सकती हैं अतः ये नहीं बल्कि हमें आसक्ति होने के कारण उससे वो लोग माधुर्य का अनुभव नहीं कर सकते कौन मुनि लोग और गोपियां साक्षात रूप में अनुभव करती हैं और उनको भी अनुभव कराती हैं यही दोनों में भेद है तो इसलिए शरीर जो प्राप्त जो मुक्ति इत्यादि है उसमें जो सुख है बहुत तृप्त रहे और भूतियों में पाराकाष्ठा तथा आनंद है। इसलिए भक्त लोगों के देने पर भी भगवान के द्वारा दिए जाने पर भी भक्त लोग कभी भी मुक्ति नहीं चाहते हैं। शारीरिक मुक्ति की तो बात क्या, सालों के सृष्टि सामित्य इत्यादि भी नहीं चाहते। जैसा गति अहम पर श्रीमद्भागवत में मैं जिसकी गति हूँ समस्त साधु भक्त व्यक्ति अपनी आत्मा को भी अत्यंत प्रिय श्री को भी इस प्रियाने कृष्ण कहते हैं मैं खुद गोपियों को चाहता हूँ। उद्धव के लिए पहले कहा और उद्धव जिनकी चरण की धूली वांछा करते हैं इसलिए उद्धव विशेष है और उद्धव ही जिनके चरण की धूली चाहते हैं आशाम हो चरण रेणु की सामग्री इसलिए गोपियों की अत्यंत अधिक मंगला। इसलिए कहते हैं इन सब प्रमाणों के द्वारा ये हुआ कि इन मुक्तिवादी जो मुनि हैं जो समाधि इत्यादि लगाते हैं उनसे तो साधारण नाम का आश्रय करने वाला भक्ति उनसे बहुत श्रेष्ठ है तो इन गोपियों की तो बात ही क्या है। इसलिए गोपियां श्री से भी अधिक श्रेष्ठ हैं और भक्तों से श्रेष्ठ हैं इन लोगों की तो बात ही क्या। इधर कहते हैं मैं उनके गृह में अत्यंत कातर हूँ कृष्ण कह रहे हैं ऐसी जो गोपियां उनको हे उद्धव आप जा करके शांत रूप में जो क्रांति होती है एक वस्तु को पार करके दूसरी तरफ ले जाए। आज के दिन में सूर्य विषुवत रेखा से उस तरफ दक्षिण की ओर में कर्कश मकर रेखा एक होती है उसको पार करके चले गए थे अब उसको पार करके उत्तर की तरफ में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब आज से उत्तरायण आरंभ हो गया अब तक दक्षिणायन चल रहा था अब आज से उत्तरायण होगा। उत्तरायण में अब ऊर्जा हम लोगों को अधिक मिलेगी। अब तक सूर्य का की जो शक्ति वो जरा दूर हो रही थी इसलिए सूर्य मकर राशि को पार करके अब इस तरफ में उत्तर की तरफ में विषुवत रेखा की तरफ में बढ़ेंगे और विषुवत रेखा को भी पार करेंगे पार करके तब फिर कौन रेखा इधर मकर और कर्क राशि में जब आएंगे उसमें सबसे कर्कट माने अत्यंत तीव्र
गर्म
गर्म फिर वहां से दक्षिण आए होंगे इसी तरह से उनकी दो ये चाल है इसको शुभ माना के जाता है और थोड़े दिन में बसंत ऋतु आए
संक्रमण शुभ माना गया।
जब मकर पर सूर्य पहुंचते हैं उसमें अत्यंत अधिक ठंड रहती है अधिक ठंड उसमें शरीर में गर्मी कम रहती है इसलिए गर्मी को लाने के लिए तीन और गुड़ यदि शुद्ध गुड़ हो दोनों को मिला करके लड्डू बना करके खाया जाए तो शरीर में ऊर्जा गरीब लोगों को ये मिलेगा नहीं इसलिए दान करने की भी विधि है जिसको शक्ति है वो दान करें विशेष करके महात्माओं को जो कि किसी के घर में नहीं जाते गरीब ब्राह्मणों को गरीबों को ये चीजें दी जाए जो इसके लिए प्रयास नहीं करते हैं उन लोगों के लिए दी जाए। दूसरी बात यदि चावल में दाल मिला करके यदि रसोई हो खिचड़ी सहज पाच्य लघु पाच्य और शरीर में ऊर्जा को देने वाला इसलिए ये स्वयं खाने की और दूसरों को देने की विधि बतलाई गई है नहीं तो शरीर रुक्ष हो जाता है रुक्ष माने क्या? रुखा हो गया,
लावण्य हीन,
वो फटने लग जाता, ओठ फटने लगता है, पैर फटने लगेंगे, मुख फटने लगता है, कांतिहीन शरीर हो जाता है। इसलिए तिल इत्यादि उसके रस है, तेल है, भीतर में जाने से वो शरीर को भी बड़ा स्निग्ध रखता है, हजम भी होता है और शरीर में कांति बनी रहती है, रोग भी दूर होते हैं। इसलिए हमारे पर्व सब विचार करके शारीरिक, व्यक्तिगत, व्यष्टिगत और राष्ट्रगत सब विचार करके पहले किए जा रहे थे। आजकल सब वो सब नहीं होते, धीरे धीरे उपेक्षा हो रही है इन सब चीज़ों की। इसलिए ये सब जान बुझ करके सामाजिक कल्याण के लिए, व्यक्तिगत कल्याण के लिए ये सब चीज़ों के लिए पर्व बनाएंगे। आजकल उसका लोग महत्व नहीं समझते, बस ये जो कुछ संक्रांति इत्यादि है ना, बस महिलाओं तक सीमित है। महिलाएं बस कुछ दान करेंगी, कुछ जमुना में भी स्नान पुरुष लोग नहीं करेंगे, जाए बस महिलाएं। पहले हम लोग देखते थे ये संक्रांति के दिन वहाँ पर बड़ी भीड़ लग जाती थी जमुना में, और सवेरे से लोग स्नान करते। जो आजकल जमुना का पानी भी कुछ गड़बड़ हो गया है, रोगयुक्त हो गया है, तब ये सब चीजें थी। हम लोग के समय में नदियों का पानी एकदम निर्मल होता था, जाने से स्नान करने से साथ ही साथ में गर्म हो जाता था। आदमी ठंडे में स्नान करा 4 बजे, या नदी में गया और स्नान करके आया तो एकदम शरीर पूरा आराम युक्त ये सब हो जाता है। आज के लोगों को ये सब अनुभव ही नहीं होगा। और वहीं वन जंगल में मेला लग जाता और वहीं पर सब लोग बैठ करके खाते पीते। मेला माने क्या? अपने दूर के जो संबंधी हैं उनके साथ में
मिलन।
जैसे कृष्ण मेला में गए ना तो गोपियाँ मिल गई वहाँ, ये मेला का था। वहाँ पर जितने उनके सभी संबंधी, नंद बाबा बहुत कहीं, वसुदेव देव की बहुत दिनों से कुंती से भी छूट गए, 15-20 वर्षों के बाद में तब वहाँ पर मिले हैं। इसके बाद में महाभारत का युद्ध पीछे हुआ तो सब लोग एक जगह एकत्र में मिल होकर के परस्पर प्रेम प्रदर्शित करते हैं, मिलते हैं, इसलिए मेला हुआ। धीरे 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 इसका विराट रूप लेता गया और हम लोग अपने भावों से चित होने लग गए। अब ये समझते नहीं कि संक्रांति किसको कहते हैं, बस संक्रांति को तिल और ये सब खा लेते हैं या दूसरों को दान कर देते हैं, बस यही तक रह गए। इसका महत्व समझ करके करना चाहिए। कल एकादशी है, आप लोग कल एकादशी रहेंगे, परसों 9 बजकर के
53 या 54
के बाद में
अंदर
अंदर में सूर्योदय से लेकर के वहाँ तक का काम करेंगे। प्राणी में वो ब्राह्मणी होती है ना, किसी के तो वो रसोई बनाए और इनको खिलाया, परोस दिया ना? परोस दिया, प्रीति के साथ भी परोसा, सब कुछ किया। और पत्नी आई और पत्नी ने परोसा, दोनों का परोसना एक ही है, किंतु हो सकता है कि भाव कुछ और, दोनों का भाव एक नहीं। जहाँ पर प्रीति रहेगी वहां पर उस परोसने में भाव ही, पंखा करने में भी भाव, बातचीत करने में ढंग में भी भाव, वो सब। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर सब कामों की माधुरी कुछ अलग है, बैठने का ढंग निराला है, सभी कुछ है। रामचंद्र जी युवक थे, रामचंद्र जी युवक, धनुष बाण है, लक्ष्मण जी और सीता जी साथ में, हनुमान जी उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं, नौकर चाकर सभी रहे और आप व्यक्ति रहे, उस समय का भाव एक रहेगा। हमारे कि अपने परिवार में हम केवल हों, स्त्री है और बाल और बच्चे हैं, बस उस समय का भाव कैसा रहेगा? दूसरा है, एक समान नहीं रहेगा। तो यहाँ पर रामचंद्र जी का देखा, उनका तो पूर्ण जौवन था नारायण का, और रामचंद्र जी का देखा नौ जौवन, पूर्ण जौवन उनका, रामचंद्र जी का नौ जौवन, और इनका क्या है किशोर युक्त अंतिम अंतिम जौवन। मानो जौवन उनके श्री अंगों का आचरण कर रहा है, क्या तात्पर्य, वो जवन ही इनके श्री अंगों की सेवा कर रहा है, आचरण कर रहा है, वहां पर आचरण को बना दिया, शासक बना दिया जवन को, व्यक्त जवन जिसको कहा व्यक्त जवन, और उसमें किशोर कुछ भाव मिला, भक्ति भाव से मानो अंगों का आश्रय करके उनकी सेवा कर रहा है जो कई सूर सुभा आदित्य जौवन रक्षित हो भक्तेश अभिव्यंजी चार जो युवक माधुरी भंगे रियाम मानस सेवक संतो महाश्चर्य विनोद सागर। वो अपने भक्तों के साथ में भक्तों को दे करके कृपा कृपा देने के लिए मानो हाथ आतुर हो रहे हैं, सब समय उनकी भुजाएं कोई भक्त मिल आया मिलने के लिए आते उनकी भुजाएं उनको कृपा करने के लिए आतुर हो सकते हैं। मान लिया गजेंद्र के ऊपर में विपत्ति पड़ी थी, उस समय में नारायण गरुड़ के ऊपर में गरुड़ को भी छोड़ दिया चले, और द्रौपदी के ऊपर में विपत्ति पड़ी तो कौन गया, नारायण गए न कृष्ण गए, द्वारका उन दोनों के जाने में कैसा कुछ अंतर होगा कि नहीं, वैशिष्ट बहुत कुछ वैशिष्ट होगा ने? ये कि कृष्ण कुछ आतुर होकर के गए, नारायण जी को आतुरता इत्यादि का नहीं, जल्दीबाजी में गए हैं उसका पता करने के लिए और उसे मारा और उसकी रक्षा की, और ये कैसे आतुर होकर के गए, जब जब कामों पर भीड़ आई है कोई संकट पड़ा है तो ठीक वैसे ही गए। सौंदर्य और लावण्य के तो मानो ये सार है सबका अंत पर आकर्षित करना, बाप बूढ़ा हो जाता है और बेटा नवयुवक हो जाता है, हो सकता है कि बाप नवयुवक अवस्था में अपने पुत्र से भी सुंदर रहा हो, किंतु उस समय युवक पुत्र सुंदर देखो जाता है, किंतु कृष्ण का ऐसा नहीं, तो कृष्ण ठीक वैसे ही सुंदर है जैसे कि युवावस्था में
कम उम्र में,
इसलिए इनके आने पर अनिरुद्ध अनिरुद्ध जी आए तो उसने रानी ने समझा नहीं यही कृष्ण ही है सर हमारे आज जो पुत्र हैं, भेद नहीं उनको बाद में पहुंचा, ठीक वैसे ही ये रखते हैं। अब वहां पर दरबार में बैठे हैं, अब उनके पत्थर वितकम विराजते तस्य उपविष्टा वर्षामराद्वयं पार्श्वद्वये विद्धौ अव्रतो अस्त च श्रीपादुके हातपीठ मस्तके, भगवान के मस्तक के ऊपर में श्वेत चमक श्वेत छत्र ये लगा हुआ है, और दोनों तरफ में श्वेत चमक सेवक लोग उसको चढ़ा रहे हैं, सुगंध हाथ पीठ रखा गया जिस पर अपने पैरों को संभाल सकते रखते हैं उतारते हैं, राज रजिस्टर के रूप में उनके पक्षद इत्यादि चारों तरफ में प्रकाशित हो रहे हैं, और कृष्ण के अनुरूप ही उनके सेवक भी हैं, कृष्ण जैसे सुंदर और प्रभावयुक्त हैं ऐसे उनके सेवक भी प्रचारक भी वैसे सुंदर, उनकी तरह तरह की सेवा में वो व्यापक हैं लगे हुए हैं, और महावैभव समूह उनके चारों तरफ में विराजमान है, तो आठ ने बात दे उनके दाहिने की तरफ में दक्षिण तरफ में वसुदेव जी उनके पिताजी बैठे हैं धर्मासदान अलग अलग आश्रमों पर, और उसके बाद में बलदेव जी बापू इत्यादि इत्यादि मैंने यहाँ पर गर्गाचार्य पुरोहित लोग सब और ब्राह्मण के सब बड़े बड़े विद्वान ये सब एक साथ में बैठे हैं, और बाएं तरफ में महाराज उग्रसेन है, उग्रसेन के पास ही है गर्भ शक्ति की गर्भ उनके भैया छोटे भैया और शक्ति उनके शिष्य जदुवंश में है किंतु उनके बड़े प्रिय हैं जैसे अर्जुन है प्रिय सखा और दास शक्ति, और उन्होंने अस्त्र शस्त्र की जितनी भी शिक्षाएं हैं शक्ति को अपने हाथों से सिखलाया था, इसलिए सब सेनाएं चली गई दुर्योधन के पक्ष में किंतु शक्ति की नहीं गए। इनके सेनापति थे कृतवर्मा, वो बैठे हैं अपूर के पास में, क्यों बैठे हैं अपूर के पास ठाकुर पद है नहीं उग्रसेन के साथ, क्योंकि महाराजा उग्रसेन है ना, इसलिए उग्रसेन के साथ में करना चाहिए सेनापति को और मंत्री को, इसलिए उद्धव जी भी हैं और उनके मंत्री और उनके सेनापति कृतवर्मा है, तो कृतवर्मा चला गया दुर्योधन की तरफ में क्योंकि कृष्ण ने भेज दिया सबको और उनके पक्ष से लड़ाई की, किंतु शाक्यकी नहीं गए शाक्यकी भी कृष्ण के साथ में रखी, कहते हो जदुवंशियों में ये और उनके दाम तरफ में मंत्री विकद्रु कृतवर्मा और युधिष्ठिर महाराज अर्जुन नकुल सहदेव पांडव ये सब कपड़े बड़े सब बैठे हैं अपनी अपनी योग्यता के आधार पर, जो जैसा सम्माननीय व्यक्ति है लौकिक रीति है ठीक लौकिक रीति के अनुसार में है, जहाँ पर जिसको बैठना आसन पर चाहिए ठीक वैसे ही बैठे हुए हैं। नारद जी बिना लिए हुए कृष्ण के पास ही में नित्य गीत और अपने नर्म वचनों से नर्म माने परिदास युक्त वचनों से बिना जंत्र से सबके हास्य रस का उपभोग करा रहे हैं, तरह तरह से भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए नारद जी तो हमने बैकुंठ में भी देखा और उन्होंने ही कहा था कि तुम जाओ वहां अयोध्या, और फिर ये कभी ब्रज में नहीं चले जाएंगे पृथ्वी में भी आ जाएंगे सर्वत्र ये विचरण करते हैं, एक रूप होने पर भी जैसे भगवान के हजारों प्रकाश और रूप हैं ऐसे इनके भी हजारों रूप और प्रकाश है किंतु एक ही, किंतु फिर भी प्रकाश इत्यादि अलग अलग रूपों में अलग अलग भाव में अलग अलग सेवा करते हैं। बैकुंठ के जो परिकर नारद हैं और यहाँ द्वारका के जो परिकर नारद हैं उनमें वैशिष्ट रहेगा, और यहाँ द्वारका के जो परिकर जो नारद हैं और कृष्ण के प्रजलीला के जो परिकर हैं उनमें भी कुछ जो तपस्या कर रहे हैं नारद कुंड पर गोवर्धन में वो नारद का कुछ स्वभाव दूसरे तरह का है, वहां पर तपस्या किस लिए कर रहे हैं उनको लोभ हो गया था गोपियों के भावों पर, इसलिए वहां पर उस भाव को पाने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। सखा के रूप में वो है और मधुमंडल के रूप में है किंतु उससे उनको तृप्ति नहीं हुई इसलिए वो कर कभी ऐसा सिद्ध लोग में भी ऐसा होता है उसी परिवर्तन नहीं नहीं होता, तो इनको कैसे हुआ इनमें कुछ वैशिष्ट्य हमारे विचार से क्योंकि ये भूलोक में भी आते जाते रहते हैं ना, और सब जो लोग हैं वो लोग भूलोक में कुछ उनका काम नहीं है बहुत, जब कृष्ण आएंगे तो लीला परिकर के साथ में उस समय में कुछ दिनों के लिए प्रकट लीला में आएंगे सब समय में, किंतु नारद जी का क्या कभी ध्रुव से मिल जाएंगे, कभी प्रहलाद से मिल जाएंगे, कभी उनसे मिल जाएंगे, उनसे मिल जाएंगे, सब जगह हम रहते हैं। इसलिए इस जगत में आने से इस जगत में प्रकट लीला में देखा उनको रूप हो गया, और उस जगत के नीचे स्थायी पल कर होते तो शायद लोग, तो हमें अपने विचार से ये बताने शास्त्र में कहीं नहीं लिखा।
मधुमंगल है कैसे हो गया,
तो चूंकि यहाँ पर आते हैं जाते हैं ना, उस रूप में से आते हैं, देखेंगे दोनों का आनंद देखेंगे। जैसे बलदेव प्रभु जी को हो जाता है, अपने सिद्ध रूप में वो बलदेव जी हैं, कभी अनंग मंडली हो जाते हैं, तो सब रस में से आ सकते हैं, ऐसे किसी किसी का हो सकता है। जैसे एक आदमी इस जगत में साधन करते समय में चैतन्य महाप्रभु के से प्रभावित होकर के उनका भी स्मरण करता है और कृष्ण का भी स्मरण करता है, राधा कृष्ण भी जाता है, तो सिद्धि काल में वो क्या करेगा, सुख द्वीप में और ब्रज लोक में दोनों में वो सिद्ध प्राप्त करते हैं और दोनों की लीला माधुरी का स्वागत करेगा। जो एक रूप में करेगा उसको एक रूप, तो जो दो रूप में करेगा उसको कुछ अधिक लाभ होगा। तो महाप्रभु का कर्तव्य भी ऐसे ही होते हैं, दोनों में ही लोग हो जाता है। महाप्रभु यद्यपि राधा कृष्ण की ही लीला का स्मरण करके उनको जो कुछ होता है, किंतु स्मरण करने में और लीला में बहुत विचित्र मार्ग हुई है, बहुत विचित्र मार्ग हुई है। कन्हैया जी वहां पर कृष्ण को तरह तरह से हंसा रहे हैं, अपने हंस रहे हैं, देखा क्या आज सामने दूर पर गरुड़ जी सामने बैठे हैं, सभा इधर में है और कृष्ण का मुख इधर है, तो सभा के अंत में इस तरफ में किसी ऊंचे स्थान पर गरुड़ जी बैठे, जैसे हमारे यहाँ पर
उधर
भगवान है, तो उनके ठीक सामने वहाँ पर
ऊपर बैठे,
ऊपर में बैठे हैं। जैसे हनुमान जी नीचे बैठे रहेंगे ना, तो सामने डाल पर हनुमान जी बैठे रहेंगे, ऐसे ही ऊंची जगह पर ये बैठे। गरुड़ जी हाथ जोड़ के और किसी आदेश की प्रतीक्षा में ना बैठे, सब समय सब कैसा आदेश देने, और उद्धव जी भगवान के चरण कमलों के पास में रह करके उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं, नीचे बैठे संभाल करते करते, तो वहां पर नीचे नहीं एक ही आसन, आसन तो सबके लिए है, हम नीचे बैठे हुए तो वो नीचे बैठे हुए उनका पास सम्मान कर रहे हैं। है मंत्री सखा बृहस्पति के शिष्य जो के हैं और प्रभु के मन की बात को संकल्प पूछते ही वो समझ जाते हैं, सेवकों में सर्वोत्तम है, और न जाने कभी कभी उनके तरफ में देखते हैं, प्रभु देखते हैं तो आंखों से आंखों में ही बातचीत हो जाती है और इसको दूसरा कोई नहीं समझता है? ये क्यों बताया,
वो कुमार आए समझ गए बता दिया,
तो वो भगवान ने नहीं पहले देखा, देखा कौन, या भगवान ने ही देखा और आप उद्धव की तरफ में किया, तो उद्धव जी समझ गए जो कृष्ण क्या चाहते हैं। जिनको मैंने बहुत दीर्घ काल से देखने के लिए कितना दिन जुग जुगान था पृथ्वी से चले थे, जब से देखने की इच्छा करके आ रहे उस अपने प्रेमास पर अपने प्रेमात्म को दूर से देखते ही सिंहासन पर बैठे हुए मैं प्रेम से मुखित हो गया, हमको पकड़े हुए हैं जादव कुमार ने, और मैं प्रेम से मुखित हो गया। दरवाजे पर आते ही प्रभु ने स्नेह से हमारे तरफ में देखा और उद्धव की तरफ में भी देखा, आंखों में आंखों से बातें हुई और आंखों से उन्होंने आदेश दे दिया। देखो जिसके लिए मैं आज बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, आज मेरा कथा यहाँ पर पहुंची है और वो अपना समझ गए कर्तव्य जो मुझे क्या करने के लिए कह रहे हैं वो सब समझ गए। यदि सचमुच में कोई सेवक होगा तो ऐसे ही समझ जाएगा। मान उद्धव गोप कुमार आवेश कुमार उद्धव जी प्रभु जी के जो चरण सेवा कर रहे थे प्रभु जी के आंखों के इशारे से झट वहां पर उठ करके मेरे पास में था और मुझे गोपनेश में देख करके अत्यंत भ्रष्ट हुए। बंदरों ने फिर बंसी लौटा दी थी आखिर समय जो बंसी के साथ में हमारे प्रभु के पास में ग्वाला बन करके मत जाओ छपरी वेश में जाना पड़ेगा। ग्वाले वेश में ग्वाला भी थोड़ा कम होता है। अब यहाँ पर इनको देखा बड़े प्रसन्न ये जितने जादव कुमार थे उतने प्रसन्न नहीं है जितना ये क्योंकि उद्धव के साथ में गोप कुमारों का और सब लोगों का संबंध अच्छा हो जाते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे प्रेम ने मन में उचित हो गया था उसको धीरे 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 होश कराया और हाथों को धारण करके भगवान के पास में धीरे धीरे ले आया। निजांति के मन नयन आत्म नहीं वो सब ख्यात का अनेन सुरो अर्पितस्य पादाम्बुजस्य उपरि मत्सिरो बलात् स्वप्राणिना आकृष्य वतो उद्धव नभात। उन्होंने लेकर के उद्धव जी जब लेकर के आ रहे हैं तब भगवान स्वयं उठने की चेष्टा की उद्धव जी ने इशारा किया उठिए मत क्यों ये सब लोग बैठे ना कौन बैठे हैं उसके लिए उठ करके मिलने के लिए दौड़ थे इशारे से उनको मना किया किंतु प्रभु जी उतना मान तो लिया उठे नहीं किंतु हाथों को ऐसे प्रसारण करके उनको पकड़ने जा रहे थे और अपने पैरों को और उद्धव जी ने देखा जी से ये तो मिलने लग जाएंगे और महाराज धीराज होकर के हाथ में बंसी भी हुए और एक पछली काछी हुए साधा में गोप कुमार से ऐसे मिलेंगे तो ये उचित नहीं इसलिए उनको बड़ा उनके चरण में डाल दिया। प्रभु ने चरण थोड़ा सा प्रसारण कर दिया और उनके सिर के ऊपर में उनके चरण को रखवा दिया। कोई गोप कुमार होता तो ऐसा नहीं करता। ये भी एक तरह का दास स्वभाव हो गया इसलिए उद्धव जी ने अपने भावना के अनुसार में ये दास स्वभाव कभी कभी हम अपने अधिकार के अनुसार ही दूसरे लोगों का अधिकार समझते हैं। अधिकार में वो बड़ा है कि तो हम उम्र में बड़े जैसे उद्धव जी वहां पर उम्र में बड़े हैं और सिद्ध पर कर रहे हैं इसी तरह से हो सकता है कोई नवागंतुक हो भक्त पर उसका अधिकार हो सकता है तो ऊंचा हो किंतु वो अपने अधिकार का अनुरूप ही उसे व्यवहार करता है। इन्होंने सब झुका दी कृष्ण को अभीष्ट नहीं था कृष्ण तो चाहते थे यहां उसे मिल रहे ऐसा किंतु उद्धव जी ने नहीं करने दिया और लोक समाज की दृष्टि से ऐसा भी करते थे। प्रभु ने भी जैसा परिवेश देखा और उद्धव का भाव देखा अपना चरण उसके सिर पर रख दिया किंतु उनका अभी नहीं था किंतु यहाँ पर द्वारका लीला के बाद ऐसा ही करना पड़ेगा। स्वप्राण नाथ काम बुझे न मेरी इस कृष्ण प्रति काम परिमार्जनी वंशी ममा आदाय करा दियोग स्वयं तुष्णि स्थितो अश्विनी अश्विज महाआत्म मैं एकदम उनके निकट में चला गया, मैं मुख को फिर उठा मैंने उठाया मैं उठा। तो हमारे प्राण श्री कृष्ण अपने कमलों के द्वारा मेरे अंगों का स्पर्श करने लगे। राम जी ने अभी नहीं किया ना, नारायण की तो बात नहीं किया। तो कृष्ण बैठे बैठे ही पैर तो दिया उसके ऊपर में, सिर के ऊपर। ये भी कृपा का एक लक्षण है। नित्यानंद प्रभु जी ऐसे ही करते थे, नित्यानंद प्रभु जी और अभिराम ठाकुर जी ऐसा करते, महाप्रभु जी ऐसा नहीं करते। महाप्रभु जी तो अपने चरण की धूली और चरण का पानी भी किसी को नहीं छूने देते थे, किंतु नित्यानंद प्रभु जी जब भी कृपा करते थे तो उसके सिर पर अपना चरण दे दिया, जैसे रघुनाथ दास के ऊपर मतलब दिया। और उनके शिष्य अभिराम ठाकुर जी उसको जरूर सिर पर पैर देंगे, मार भी देंगे, उसे चाबुक लगाएंगे, चाबुक लगाने ही उनकी कृपा थी, जिसको प्रसन्न हो गए कपड़ से ऐसे उसके पीठ पर भागते थे। किसी किसी संतों का भी स्वभाव ऐसा होता है, अरे साले इतने दिन तक कहा था ऐसे कहा और उसे बड़े गाली गलौज के साथ में बोले, नहीं मानो ये एकदम अपना जैसा कर देंगे, और जो नहीं समझेगा कहीं अरे ये क्या कर रहा है, अरे तुम कहां था, क्या से कहा भाई ये हमको अरे कर रहे हैं। एक बार ऐसा ही मेरे संबंध में भी हो गया, मैंने अरे भाई कर दिया था बस, पर कोई यहाँ के मथुरा के बिगड़ गए खूब जोर से, मैंने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने तो अपना समझ कर किया चाहता था, तो खबरदार ऐसा मत कहीं अरे भाई अरे क्यों अरे तो अरे अरे कहते अपने हाथों से उन्होंने मागन का ये प्रेम का प्रतीक है। फिर बड़े प्यार से हमारे हाथों से बंसी प्रभु ने दी, अगले करके बस देखते देखते ठीक हो आंखों में आंसू छा गया, हृदय कुछ रोमांचित हो गया, कुछ द्रवित हो गया और कुछ न पा सके। क्यों ऐसा हुआ, सभा एकदम देखती रह गई, सभा का काम भी बंद हो गया, मौलम मौल करके महान व्यक्ति की भांति अश्रु भाषण करने लगे, तुष्णी थी तो अश्रुणी अश्रु छरने लग गए, कवि की स्मृति आ गई। बहुत दिनों के बाद में आज आई, वैसे तो कभी कभी रात में हो जाती है, जैसे कि पहले कक्षा में हम लोगों ने वर्णन किया है, और यहाँ पर कुछ साक्षात स्मृति आ गई, इसको कहते हैं उद्दीपन, कोई चीज देख करके उद्दीपना। बहुत दिनों के बाद में बंसी उनके हाथों में आई है, बहुत देर तक बोल नहीं सके। उद्धव जी समझ गए, उद्धव जी ने इशारा किया, यहाँ पर अभी कवि का भाव मत प्रकट कीजिए और रोइए मत, आप महाराज भी आज यहाँ है और यहाँ पर युधिष्ठिर जी और बड़े बड़े जादू लोग सब बड़े बैठे हैं, आपके पिताजी भी पास में बैठे हैं और साथ साथ में उग्रसेन महाराज हैं, ये लोग यदि आपको रोते हुए यहाँ देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो उनको बहुत मुश्किल से उन्होंने धैर्य धारण करके बोले, खलात क्षेमन अनामयवासी किम अनामयम, अनामयम मैंने तुम्हारा मंगल तो है, कोई रोग टोक तो नहीं, कुशल से तो यहाँ पर पहुंचे, तुम्हारा कुशल तो है, तुम्हारा किसी प्रकार के अमंगल तो नहीं हुआ, ये क्यों पूछ रहे हैं। लोक रीति एक भी और इतने दिन तक कष्ट होगा था, कोई आदमी कष्ट से ही ना आया, पूछेंगे ये कैसे ठीक से आ गया, रात में भीड़ है कितनी कष्ट हुई है, कभी कहीं हाँ आपकी कृपा से नहीं ठीक आ गई, इसलिए वो पूछ रहे हैं और मंगल तो नहीं हुआ। इस प्रकार से ऐसे मधुर भाव से और गदगद वाणी से बात मानुष आगे बोल नहीं सक रहे हैं। इस प्रकार से एक अभूतपूर्व दशा को ये पूछते पूछते ही एकदम गदगद हो गए। मंत्री सवर उद्धव जी कौन? तो बृहस्पति के शिष्य हैं, बहुत चतुर हैं, इसलिए वो कृष्ण को समझा सकते थे, इसलिए उन्होंने इस रूप में समझाया और बातचीत की और सांत्वना दिया कि पास में बैठे और कोई भी नहीं जान सके। इसको साधारण रूप में ही लोगों ने लिया, किंतु उद्धव जी को इस चीज को समझ रहे हैं। यही तो उनका हम लोग भी क्रमशः ये सबको भूलेंगे। तेनावती सुनी च सरोपी सहिष्णुना अमानिना मान देना कृतमीय सदा। कहते तो हैं सब सागर और कहते हैं बाक वेद क्रोध वेद जिह्वा वेद उदर वेद उपस्थ वेद इत्यादि दूर करने से हम लोग क्या चेष्टा होती है। बाकी और बढ़ करके कुछ दिनों तक आदमी वो प्रबल होकर के साधुओं का आश्रम भी छुड़ा देते हैं, इसलिए सावधान करने चाहिए। इसलिए कहते हैं गोपियां घर में रहते हुए भी अपने पतियों के साथ रहते हैं, लिखना पोतना कूटना जो कुछ था सब करती हैं, किंतु देह की स्मृति सब समय भगवत चिंता, इसलिए वो कह रहे हैं आत्म समाधि लब्ध। जो उत्तम भागवत लोग जो होते हैं ज्ञान मिश्रा वाले जैसे सनक सनंदन सनक सनक कुमार इत्यादि, वो लोग देह की स्मृति भूल जाते हैं, देह ये कुछ उनका नहीं रहता, सब समय पांच पंचवर्षीय बालक के समान रहते हैं और वो भी भूले रहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं उन लोगों से ये गोपियों की महात्मा क्या ही अपने पुत्र और सब संसारिक कामों में लगी रहती है, उसी से कर रहे हैं।